ओम शांति। 17 नवंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए, बाप के गले का हार बनने के लिए क्या करो, ज्ञान योग की रेस करो, रेस दौड़। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना, तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्रश्न, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। कोई भी बीमारी है वो बीमारी क्या होती जाएगी, ठीक होती जाएगी। क्या करें हम, मस्ती में रहें। और कौन सी मस्ती में रहें, मलाई मस्ती में रहें। वो मलाई मस्ती क्या होती है, मलाई ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। ज्ञान और योग की मस्ती क्या होगी, रोजाना ज्ञान की नई नई बातें जो बाबा बताए उनको सारा दिन चिंतन करते रहे, उसका क्या लाभ होने वाला है और उसका लाभ कैसे हम प्राप्त करें और उसका लाभ फिर प्राप्त करके माने। जानकारी तो मिली परंतु उस जानकारी का फायदा क्या हुआ, उसका फायदा उठाएं। ये जब करते हैं तब जो है इसे कहते हैं ज्ञान और योग की मस्ती। और कोई बातों का चिंतन ना हो, क्योंकि दूसरी बातें दुनिया भर का, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, मतलब दुनिया भर का चिंतन बुद्धि के अंदर चलता रहता है, हम सारे अपना समझ सकते हैं। ज्ञान की बातों का चिंतन हम नहीं करते तो मलाई मस्ती नहीं है ना। ज्ञान और योग की मस्ती में रहो, बस सारा दिन वही बातें बुद्धि में चलती रहें। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोग रखेंगे उतना ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है। इस शरीर को श्रृंगारना, चाहे बाल काले करना हो, पाउडर लगाना हो, क्रीम लगाना हो, अपने आप को झूठा सच्चा जवान दिखाना हो, चेहरे पर खून ना हो अंदर और चेहरे पर लाल रंग लगा के घूमना हो, ये सब फालतू का श्रृंगार है बाबा कहते हैं। क्योंकि ये देह अभिमान है, ये क्या है, देह अभिमान है। क्योंकि इसके कारण तो देह अभिमान आया ना, कि मैं यंग दिखाई दूं, नहीं मैं सुंदर दिखाई दे रहा हूँ, तो ये बॉडी को दिखाया जा रहा है ना।
हाँ
बिल्कुल बिल्कुल, श्रृंगार। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है, तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। ज्ञान योग से सजाना माना दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। जैसे जैसे अपने जीवन में दिव्य गुण धारण करते जाएंगे तो ज्ञान और योग के बिना वो आएंगे ही नहीं। जितना जितना अपने आप को ज्ञान और योग से सजाएंगे, यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है, यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीत, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अब दुनिया में बाप तो बहुत है, बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है। उन सभी का बाप रचयिता एक है, वही ज्ञान का सागर है। ये जरूर समझना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सदगति होती है, ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति मनुष्यों की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती, जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सदगति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान सागर आकर दुर्गति से सदगति में ले जाए। कब? जब संगम हो, कलयुग खत्म होने वाला हो, सतयुग शुरू होने वाला हो, तब तो बाप आए। पहले आकर क्या करे? जब नरक से स्वर्ग में ले जाना हो, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाना हो, तब तो बाप आए। इससे पहले बाप आते? और बाप का काम है सारी पतित दुनिया को पावन दुनिया में ले जाना।
भाई जब कलयुग का अंत है, सतयुग का प्रारंभ है, इसका टाइम तो होगा,
ये चल रहा है ना? पहले कैसे मतलब मैं समझा नहीं।
मैं ये कह रहा हूँ, जब मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तो पता है बच्चा बहुत दुखी हो रहा है, तो कष्ट को पहले क्यों ना हर सकते?
पहले नहीं हर सकता, क्योंकि आपको कष्ट क्यों मिल रहा है? आपको कष्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने जिसे कष्ट दिया वो कष्ट तो उतना लेना पड़ेगा ना, हिसाब बराबर नहीं होगा ना। फिर तो पास खातरी होगी, जब आपने इसको डंडा मारा तो परमात्मा ने कुछ नहीं कहा, और जब ये डंडा आपको मारे तो परमात्मा बीच में आ जाए तो आप क्या कहेंगे? पास खातरी हुई ना, परमात्मा इसलिए बीच में नहीं आता। हाँ, हो जाता है,
अगले जन्म में क्यों भोगता है?
नहीं होता, अगले जन्म में आएगा ही नहीं। यही तो आप समझे नहीं आज तक कि हम जब घर जाएंगे, हमारा संसार में किसी भी आत्मा से कुछ भी लेना देना बाकी नहीं होगा, और सबका हिसाब किताब एक साथ बराबर होता है। मेरा आपके साथ भी बराबर होगा, इनके साथ भी बराबर होगा, आपका मेरे साथ भी, और सबके साथ बराबर होगा।
नहीं तो सभी तो सतयुग एक साथ नहीं जाते।
सब सतयुग में नहीं जाते ना, घर जाएंगे
तो उनका बैलेंस रहना होगा।
नहीं, कोई बैलेंस नहीं रहा, कोई बैलेंस नहीं रहा। घर जाना माना कोई बैलेंस नहीं। सारे संसार की हर एक आत्मा का किसी के साथ कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रहा, और तब वो सारी आत्माएं परम धाम जाती हैं। और परम धाम एक ऐसा फ्रिज है, इस फ्रिज में तो कुछ रख दो, हो सकता है कुछ दिन बाद खराब हो जाए, परंतु परम धाम में जैसे आत्मा जाती है वैसे ही बाहर आती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता।
सतयुग में 9 लाख की अकाउंटिंग किया गया।
हाँ, वो बताता हूँ कि जो आत्माएं अब परमात्मा से पढ़ रही हैं, जिन्होंने अपने आप को 100 नंबर में पास किया, वो सबसे पहले आएंगी। जिन्होंने 99 में किया वो बाद में आएंगी,
आएंगी ना बाद में,
बाद में आएंगी। तब तक वो फ्रिज में रखी हैं, ठीक है नहीं? जब धरती 99% वाली होगी धरती 99% पवित्र रह गई तो 99 वाली आत्मा ऊपर से नीचे आ जाएंगी। नियम ये है, आप है तो जैसे ही धरती यूज होने के बाद 98% रह जाएगी तो ऊपर से 98 वाली आत्मा नीचे, नियम है ये। 97 होते 97 वाली आत्मा नीचे। जैसे जैसे धरती कमजोर होती जाएगी वैसे वैसे कमजोर आत्माएं ऊपर से नीचे आती जाएंगी। बाकी वहां फ्रिज में रखी हुई आत्मा का तो वो 95 पे गई है तो 95 रहेगी, जो 50 पे गई है तो 2500 साल तक उसमें 50 से जरा सा फालतू भी नहीं होगा और जरा सा कम भी नहीं होगा। एक ऐसा फ्रिज है परमधाम और कुछ नहीं है, वहां कोई संकल्प नहीं, कोई बोल नहीं, कोई कर्म नहीं, ना खाना ना पीना ना उठना ना बैठना, ना कोई मजा और ना कोई दुख, क्योंकि वहां तो बस ऐसे जड़ है, चेतन होते हुए भी जड़ है जी, पड़ा है। हाँ उस पत्थर में भी फर्क आ जाएगा, पड़ा पड़ा हवा मिट्टी पानी कुछ ना कुछ फर्क करेगा, परंतु उसको कुछ नहीं लगेगा, वो जैसे है वैसे रहेगा। यहां से जैसे परमधाम गया वैसे ही आएगा, लाइक एकदम एक ऐसी जगह है जहां, और कोई जगह भी ऐसी नहीं है कि जो कोई ऐसी जगह कोई बना रखी हो, चल भी जहां बिस्तरा बिछा पड़ा हो जहां जाके सो जाए, नहीं। सबसे प्राचीन भारत, भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए वही 84 जन्म लेते होंगे, जो पहले पहले आएंगे ना उनके ही 84 जन्म होंगे, जो लेट आएंगे तो उनके जन्म उतने ही कम होते जाएंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे, पर तो सब ब्राह्मणों के नहीं, क्योंकि ब्राह्मण भी जिन्होंने पहले 150 साल में आ गए तो उनके 84 हो सकते हैं, जो जितना लेट आए जितने 150 साल कम आए उतने जन्म उनके कम, और त्रेता में जितने 100 साल लेट आए उतने जन्म कम। मुख्य को ही उठाया जाता है ना, अब एक एक की तो बात नहीं बताएंगे, बाबा कहते इन बातों का किसी को भी पता नहीं, पूरी दुनिया में इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं, पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर ये स्थूल लोक, ये बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है, मूल वतन सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोक की नाथ कहते हैं तो इसका अर्थ भी चाहिए ना, कोई त्रिलोक होगा, कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोक की नाथ एक बाप ही कहला सकता है, तीनों लोकों का नाथ एक बाप ही कहला सकता है, और कौन कहला सकते हैं, उनके बच्चे, वे बच्चे बाप की सारी जायदाद के मालिक होते हैं ना, बने तो हाँ तो सारे बच्चे जो बाप समान बनेंगे वो त्रिलोक की नाथ बनेंगे, जो बाप समान बनेंगे नहीं वो त्रिलोक की नाथ कैसे होंगे। एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं, यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम ही त्रिलोकीनाथ है, मनुष्यों के नाम ही त्रिलोकीनाथ है, शिव है नाम, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, मनुष्यों के ही नाम है, ये सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रख दिए हैं, डबल नाम भी रखवाते हैं, एक से काम नहीं चला,
शिव शंकर,
हाँ शिव शंकर, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, दो दो नाम भी इकट्ठे रखवा देते हैं। अब ये तो किसी को पता नहीं, राधे और कृष्ण अलग अलग थे, वे एक राजाई का प्रिंस था और वे दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। ये अभी तुम जानते हो, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती हैं। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं, यहाँ भी ये नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वे नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। रोजाना मुरली में से नई नई पॉइंट्स पकड़ना, फिर उनको अपने जीवन में धारण करना। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं आ सकते। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है, ये भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को भी कोई नहीं जानते, कितनी कमाल की बात है। बाबा कहते इस ड्रामा को भी कोई नहीं जानते, ये भी समझते हैं कर्म क्षेत्र है। गीता दूसरे दुनिया वाली झूठी गीता में भी लिखा गया कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, मतलब ये कर्म करने का क्षेत्र है जहां हम पाठ बजाने के लिए आए हैं। परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो गोया कुछ भी नहीं जानते, गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है, तुमको तो सब कुछ जानना है। बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है, क्या फर्ज है?
सबको बाप का परिचय,
हाँ जी, औरों को बाप का परिचय देना, सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसे ना कहें कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे, बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। ये क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है ना। परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं है कि ये भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। बल कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कहते। बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है, बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं वे आते ही हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर सब धर्मों वाले आते जाते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापिस जाएं, परंतु तुमको यहां लाया किसने, तुमको यहां लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना किया, उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए वापस जाने के लिए, ये तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने, पार्ट बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ा कर सुख में ले जाना है। बाप का ही काम है, बाप का ये बर्थ प्लेस भारत है, बाप का ये बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते। थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ है, कल्प कल्प बाप भारत में ही आते हैं। ये सबको समझाना है, निमंत्रण देना है, पहले तो ये सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े। निमंत्रण तो सबको देना है ना, रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए, अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, उनकी मदद सब मांगते,
उनकी मदद सब मांगते
कि भाई आकर के हमारे यहाँ भी क्लास कराओ। उसको कहेंगे भी अच्छी बातें हमारे भाई बहनों को समझ में आए। उनके नाम ही जपते रहते, जितना नाम सूरज भाई का जपा जाता है और किसका जपा जाता है भाई, क्योंकि सब क्लासे वहां होती है ना, उषा दीदी है, शिलू बहन जी है, मतलब जो अच्छे ज्ञान सुनाने वाले होते हैं, हैं जी, जयंती है, शिवानी है, मतलब जो अच्छे अच्छे क्लास कराने वाले हैं, उनके सारे नाम रटते रहते हैं ना भाई, उसकी क्लास उसकी क्लास उसकी क्लास। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को, भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं, फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरहंकारी हैं, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं। कहते हैं ना, मिठरा घुर ते घुराए, मीठा बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा, तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं, पद नहीं मिलेगा, पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं, उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होते हैं, हूबहू ये भी ईश्वरीय रेस है, दौड़ है, कौन कितना तेजी से दौड़ेगा उतना बड़ा प्राइज लेगा। ज्ञान और योग के बल की रेस है, योग का बल याद है, ज्ञान का बल, योग का बल, अनुभव, ज्ञान की बातों को प्रयोग करने के कितने अनुभवी हो वो आपका बल है। योग का बल, बाबा के ज्ञान को कितना अपने जीवन में प्रयोग करने में एक्सपर्ट हो, प्रयोग को योग कहा जाता है, ठीक है, ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करने में कितने एक्सपर्ट हो तो वो है योग का बल। ज्ञान का बल, ज्ञान की बातों को प्रयोग करने के अनुभवी और ज्ञान को बताने के अनुभवी, और योग का बल जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग करना। एक है बताना, जानना, समझाना, और एक है अपने जीवन में प्रयोग करना। ये दोनों बल की रेस हो कि मैं सबसे आगे हूं, कोई भी बात ऐसी ना हो जो मुझे समझ में ना आती हो, मैं वो ज्ञान का तीर मारूं और वो घायल हो जाए, उसे समझ में आ जाए। जो इनमें तीखे जाते हैं वही बाबा के गले का हार बनेंगे और फिर वो तख्त के नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है, अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्म योगी हो, क्लास में एक घंटा पढ़ना है फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाप कहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी पुनियाद। दिन में भी 8 घड़ियां होती हैं, उनसे भी बाप कहते हैं एक घड़ी अच्छा आधी घड़ी। 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर अपने धंधे धोरी में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, सुदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते करते सुदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ। फिर नींद आए तो सो जाओ, पर नींद आई तो जागते रहेंगे तो क्या करेंगे। फिर अंत मत्ती सो गति हो जाएगी, फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। अच्छा, जो करेगा सो पाएगा। करने वाले को देखने में आता है, उसकी चलन भी प्रत्यक्ष होती है ना, ना करने वाले की चलन ही और होती है। ये करने वाले की चलन अलग और ना करने वाले की चलन अलग देखा जाता है। ये बच्चा विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है। ये तो पुराना शरीर है, ये शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है। नया शरीर कहाँ मिलेगा?
भविष्य में।
आत्मा को प्योर बनाना है। ये तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो तो क्या है ये सब? वर्थ नॉट ए पेनी, बेकार है ये श्रृंगार सब, फालतू है। अब तुम सबकी सगाई किसके साथ हो गई है? शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है, अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, जैसे वो कहे वैसे। हाँ, क्या पूछना? कर ली शादी, कर ली है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। स्वर्ग की परी बन जाएंगे, प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे। कहते भी हैं कृष्ण ने भगाया, फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगा कर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। भगाया ही महाराजा महारानी बनने के लिए। तुमको भी ये पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं जो पद मिले सो ठीक है। यहाँ मुख्य है पढ़ाई, ये पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं। वे बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं, कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, बस पुरुषार्थ करते रहो। परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है, समय सिर पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बतलाते, कोई क्या बतलाते, समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे। जो शास्त्र में लिखा है वो तुम झूठे कैसे क्यों कहते हो। भगवान थोड़े ही झूठ बोल सकता है, समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए कि जो शमशान में समझा रहे हैं वो भगवान है। समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए, योग से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है। कहां कहां बाबा भी मदद करते हैं, ड्रामा में जो नूंद है वो रिपीट होता है, ये भी हम समझते हैं। और कोई ड्रामा को समझते ही सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता है, टिक 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 होती जाती है, हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। सब एक जैसे बन नहीं सकते। ये लोग समझते हैं हम एक हो जाएं, एक का अर्थ ही नहीं समझते। एक क्या हो जाएं? क्या एक फादर हो जाना चाहिए वा एक ब्रदर हो जाना चाहिए? हम सारे एक क्या बने? एक फादर तो हम नहीं बन सकते, सारे मिलकर एक फादर बन जाएं, या फादर फादर सारे मिलकर के एक हो जाएं, और ब्रदर के रूप में भी नहीं। ब्रदर कहें तो भी ठीक है कि हम सारे भाई भाई हैं, पर तो एक भाई तो नहीं हो सकता ना, दो होंगे ना, ज्यादा होंगे ना, तब उनको भाई भाई कहेंगे ना। श्री मत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्री मत पर नहीं चलते तो वे श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे, चाहे बाप हो चाहे बच्चा हो। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। बच्चों की ये रेस है, रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। सारे वहां रेस में आ जाएंगे, जो लायक होते हैं उनको रेस के लिए खड़ा करेंगे ना। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छी फर्स्ट क्लास निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। ये अश्व है, शरीर भी क्या है, घोड़ा है, और ये अश्व है, ये भी घोड़ा है, ब्रह्मा बाबा भी। किसका घोड़ा है ये? हुसैन का घोड़ा, मुसलमान। हाँ, मुझसे मुसलमानों का जो पैगंबर है
ये उसका मनाते तो
उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे हो तो डबल अहिंसक हो। काम की हिंसा है नंबर वन, इस हिंसा को कोई जानते नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कहते हैं ये विकार है, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है, तुमको ये सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राज योग है, तुम्हारा हठ योग है, तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिव आचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना, समय पर सुनाना सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं, तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म होंगे? बोलो ये तो तुम हिसाब करो ना। 5000 साल में 84 जन्म, क्राइस्ट के 2000 वर्ष हुए तो 30 साल का एक जन्म है, पहले 60 साल का था, 30-32 जन्म हो जाएंगे। बाबा ने वैसे हिसाब लगा दिया, 2000 का मतलब है कि 42 जन्म तो कलयुग में मिलेंगे मिलेंगे 1250 साल के, ठीक है कि नहीं? तो 500 साल में कितने जन्म कम होंगे? 8 जन्म कम होंगे, तो 21 में से 8 गए, 21 में से 8 गए 13, ठीक है? तो 13 जन्म वो और 42 जन्म वो, 55 जन्म हो जाएंगे। ये तो क्लियर है, जो बहुत सुख देखते हैं वे दुख भी बहुत देखते हैं, जो बहुत सुख देखते हैं वे दुख भी बहुत देखते हैं, उन्हों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना चाहिए, कौन सा हिसाब निकालना चाहिए?
एवरेज,
एवरेज माना औसत, ठीक है? लगभग पीछे जो आते हैं वे थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का हिसाब निकाल सकते हैं, निकाल करके एक दो जन्म का फर्क पड़ेगा। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए, ये सब बातें क्या करना चाहिए? विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या, कोई पूछे तो क्या,
इसमें भी ना
समझाए फिर भी बोलो। पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना, तुम बाप को तो याद करो, जितना जितने लेने होंगे उतने लेंगे, बाप से वर्षा तो लो, अच्छी रीति याद करेंगे तो समझाना है ना, मेहनत का काम है, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना सफलता मिलेगी। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि
चाहिए
चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते, अरे ज्ञान रतन तो धारण करो, ज्ञान रतन तो धारण करो, तो कहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें, हम समझते नहीं। नहीं समझते हो, नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है, ज्ञान योग में रेस करनी है। ज्ञान योग में क्या करनी है? रेस करनी है। बाप के गले का हार बनना है। नींद को जीतने वाला बन, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। सुदर्शन चक्र फिराना है, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। विचार सागर जो सुना मुरली में, उसको रास्ते में चलते हुए, घर में बैठे हुए सोचना है कि आज बाबा ने हमें क्या क्या समझाया है। वरदान, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में, क्योंकि हमारी अवस्था जो है ना, क्या रहे? श्रेष्ठ रहे, मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद करते हैं। मतलब बैठते तो बाबा की याद में हैं। आज बाबा बिल्कुल स्पष्ट समझा रहे हैं, कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने की बदले, मैंने वहां जाकर प्रदर्शनी समझानी है, वहां कोर्स कराना है, वहां ये बताना है, वहां ये बताना है, बैठे योग में है, मतलब अपने आप को आत्मा समझकर नहीं बैठे, आत्मा का अनुभव नहीं किया, मैं आत्मा हूं ये बिल्कुल अनुभव नहीं किया, अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला, एक सेकंड का पेपर और उसमें क्या हो गया? फेल। उस समय आत्मा समझे तो सहज शरीर को छोड़े, आत्मा नहीं समझा तो सहज शरीर को नहीं छोड़ेगा। एक सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे, उस समय सिवाय बाप के निराकारी निर्विकारी निरहंकारी और कुछ भी याद ना। तीन चीजें याद हों कि मैं आत्मा, निराकारी हूं, कोई अहंकार नहीं। अहंकार का मतलब होता है मैं, ठीक है नहीं? तो मैं जो है ये बिल्कुल भी नहीं हो, मैं आत्मा हूं और निमित्त हूं और निर्विकारी, कोई विकार। उस विकार कब आते हैं? जब देह समझते, कोई विकार नहीं, अहंकार नहीं और निराकारी, मैं आत्मा हूं। और कुछ याद ना आए इन तीनों के, ये तीन शब्द भी याद ना आए, ये तीन शब्द भी याद ना आए, इन शब्दों की स्थिति में हो, इन तीन शब्दों की अवस्था बनी हो, बाकी ये नहीं मैं निराकारी हूं, निर्विकारी हूं, निरहंकारी हूं ये बोलू, ये बोलना भी ना हो, ये संकल्प भी ना हो, और कुछ याद नहीं। क्योंकि ये याद भी है तीनों अक्षर तो भी कुछ याद है कि बाबा ने क्या कहा है। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसलिए ये अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थिति में स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले स्लोगन है। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। मतलब एक का कहना मानो तो आसान हो, जब दस का कहना मानो तो किसका माने, किसको नाराज करे? तो एक बल एक भरोसा होगा तो सहज सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम।